पृष्ठ संख्या 365, शीर्षक है, बिंदु तीसरा है धर्मनिरपेक्षतावाद। इसमें शीर्षक है पृष्ठभूमि। धर्मनिरपेक्षतावाद वैसे आधुनिक युग की एक पाश्चात्य धारणा है जो मानवतावाद के अंग कहा जा सकता है। यह वह सिद्धांत या दर्शन है जो मानव हितों को सर्वोपरि स्थान देता है। इसमें पारलौकिक जगत का विरोध तथा लौकिक जगत को महत्व दिया जाता है, परंतु भारतीय दृष्टिकोण से पाश्चात्य जगत के धर्मनिरपेक्षतावाद का हूबहू रूप नहीं स्वीकार किया जाता। धर्मनिरपेक्षतावाद का संबंध एक ओर धर्म से है तो दूसरी ओर राज्य से। इसके ऐतिहासिक रूप को देखने से इसके वास्तविक स्वरूप का पता चल सकता है और भारतीय दृष्टिकोण से इसका भेद भी स्पष्ट किया जा सकता है। वैसे भारतीय धर्मनिरपेक्षतावाद पाश्चात्य विचारधारा का ही एक रूप है, परंतु उसका उपयोग भारतीय सिद्धांत और परंपरा के आधार पर किया गया है। अतः यहाँ हम धर्मनिरपेक्षतावाद को दो रूपों में देखेंगे, एक पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षतावाद और दूसरा भारतीय निरपेक्षतावाद। अब शीर्षक है पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षतावाद। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स में धर्मनिरपेक्षतावाद के विषय में बताया गया है कि धर्मनिरपेक्षतावाद का वर्णन एक आंदोलन के रूप में किया जा सकता है जो नैतिकता को आधार मानता है तथा धर्म के प्रति नकारात्मक दृष्टि रखता है। इस आंदोलन की पूर्व पीठिका राजनैतिक और दार्शनिक है। इसकी उत्पत्ति की दशाएं कुछ तो राजनैतिक हैं और कुछ दार्शनिक। राजनैतिक क्षेत्र में मध्य युग के पूर्व तक धर्म राजनीति पर छाया हुआ था। चर्च अपनी सत्ता राज्य पर चाहता था और राज्य अपनी स्वतंत्र सत्ता चाहता था। कभी तो धर्म का आश्रय लेता रहा और कभी धर्म का विरोध करता रहा। आधुनिक युग के राजनीतिक दार्शनिक मैकियावली ने सर्वप्रथम राज सत्ता को धर्म सत्ता से पृथक दर्जा देने का आग्रह किया और धर्म को राज्य के अधीन करने की मांग की। इससे पता चलता है कि आधुनिक युग में राजनीतिक सत्ता का धर्म से अलगाव प्रारंभ हो गया था। धर्मनिरपेक्ष राज्य या समाज का यह प्रथम रूप है। इसकी उत्पत्ति में सामाजिक कारण भी सहायक हुए हैं, विशेष रूप में सामाजिक अत्याचार, उत्पीड़न, धनिकों और प्रभावकारी लोगों का स्वार्थ तथा धर्म के अत्याचार से भी इसके उद्भव को बल मिला है। सारांशतः सामाजिक और धार्मिक अत्याचार के प्रति जो प्रतिक्रिया हुई, धर्मनिरपेक्षतावाद उसी का प्रतिफल है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षतावाद मूल रूप से अस्वीकार का आंदोलन है। पृष्ठ संख्या 366। धार्मिक और दार्शनिक चिंतन की वैयक्तिक स्वतंत्रता की भावना भी निरपेक्षतावाद के आंदोलन का कारण है। यूरोप में जब प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रभाव शुरू हुआ तो लोगों ने धर्म पर समान अधिकार की मांग की, परंतु कैथोलिक पादरी इस पर सहमत नहीं हुए। इसका परिणाम यह हुआ कि विचारकों और सामाजिक सुधारकों ने धार्मिक संगठनों को बिना महत्व दिए राष्ट्र के विषय में विचार विमर्श शुरू किया। धर्म का विरोध करते हुए राष्ट्र के हित के चिंतन में स्वतंत्र विचारकों ने पारलौकिक जगत या अध्यात्म जगत और ईश्वर चिंतन का विरोध किया। चर्च के आतंक से और पुजारियों के प्रभाव से अलग होकर स्वतंत्र विचार का समर्थन किया। बुद्धि, विज्ञान, लौकिक जगत, तर्क, सामाजिक न्याय, लोक कल्याण आदि की पृष्ठभूमि में स्वतंत्र चिंतन का स्वागत हुआ। इन स्वतंत्र चिंतकों ने धर्म और पारलौकिकता के स्थान पर नैतिकता को महत्व दिया। इनकी दृष्टि में नैतिक जीवन के लिए आवश्यक नहीं है कि ईश्वर और पारलौकिक जीवन में विश्वास किया जाए। दार्शनिक पृष्ठभूमि के रूप में उपयोगितावादी विचारकों का प्रभाव इस पर स्पष्टतः देखा जाता है। जेम्स बेंथम तथा जे एस मिल आदि ब्रिटिश उपयोगितावादियों का धर्मनिरपेक्षतावाद के प्रचार में महत्वपूर्ण स्थान है। अब अगला शीर्षक है संस्थापक जॉर्ज जेकब होली ओक। सन 1817 से 1906 तक धर्मनिरपेक्षता के संस्थापक कहे जाते हैं। इनका जन्म बर्मिंघम में सन 1817 में हुआ था। शिल्पकार की संतान होकर इन्होंने जीवन की कठिनाइयों का अनुभव किया था। इनमें मानव की स्थिति के सुधार के लिए भीतरी छटपटाहट स्वाभाविक थी। इनके साथियों में चार्ल्स साउथवेल, थॉमस कूपर, विलियम चिल्टन आदि ने होली ओक को पूर्ण समर्थन दिया। होली ओक का यह आंदोलन 1849 में शुरू हुआ। अनिश्वरवाद या एथिज्म के विकल्प के रूप में ही इन्होंने सेक्युलरिज्म शब्द का निर्माण किया। होली ओक के अनुसार सेक्युलरिज्म का मुख्य उद्देश्य है मानव जात की उस स्थिति का सुधार करना जिसमें वह रह रहा है। दूसरे शब्दों में मनुष्य के हितों को प्राप्त कराना इसका उद्देश्य है। इस आंदोलन की यह प्रवृत्ति देखी जाती है कि इसमें न तो ईश्वरवाद और न ही अनिश्वरवाद को ही महत्व दिया जाता है। इसकी दूसरी विशेषता यह भी है कि इस आंदोलन में ईश्वरवाद तथा अनिश्वरवाद के विषय में सर खपाने की अपेक्षा मानव के अलौकिक जीवन की सुख सुविधा को परम लक्ष्य मानना चाहिए, इस पर जोर दिया गया। अलौकिक सुख प्राप्ति के लिए किसी दैव सत्ता में विश्वास न करके मानव की बुद्धि और भौतिक साधनों पर ही निर्भर होना चाहिए। होली ओक के अनुसार धर्मनिरपेक्षतावाद में कट्टरवादिता हठवादिता नहीं है। इसका लक्ष्य दैवी सत्ता की आलोचना करने की अपेक्षा मानव हित को ढूंढना है। यह दैवी सत्ता के प्रति तटस्थ और उदासीन है। इसे धर्मनिरपेक्षतावाद इसलिए भी कहते हैं कि यह परंपरागत धर्मों का विरोध न करके उनके प्रति तटस्थ रहता है। अगला शीर्षक है सिद्धांत। संक्षेप में धर्मनिरपेक्षतावाद के मूल सिद्धांतों को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। इसमें पहला है मानव की वास्तविक स्थिति में सुधार और प्रगति केवल भौतिक साधनों, खनिज पदार्थों, तकनीकी उद्योग, कल कारखानों के द्वारा लाना, मनुष्य को लौकिक सुख सुविधा की प्राप्ति कराना। पृष्ठ संख्या 367। दूसरा है, विज्ञान की प्रगति के साथ धर्म से उसका कई रूपों में विरोध प्रकट हुआ, जिसके कारण धर्म की मान्यताएं हास्यास्पद सिद्ध होने लगी। अलौकिक शक्ति में विश्वास रखने की अपेक्षा वैज्ञानिक साधनों पर निर्भर रहना अधिक उपयुक्त है। विज्ञान उन्हीं विषयों में आस्था रखता है जो वास्तविक जीवन के अनुभवों से सिद्ध होते हैं। अतः धर्मनिरपेक्षतावाद जीवन के अनुभव पर आधारित है और ये अनुभव तर्क तथा कार्य के अनुभवों से पुष्ट तथा स्थिर किए जा सकते हैं। मनगढ़ंत और कपोल कल्पना के अनुभव जो जीवन और कार्य से सिद्ध नहीं किए जा सकते, उनको स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। इसी से बेकारी और आर्थिक स्वतंत्रता की समस्या हल हो सकती है। अलौकिक अनुभव हमारी लौकिक समस्याओं का हल नहीं ढूंढ सकते। तीसरा है, धर्मनिरपेक्षतावाद जीवन के कल्याण और मनुष्य के आचरण तथा व्यवहार के लिए निरपेक्षता का सिद्धांत अपनाता है। यह निरपेक्षता भौतिक विज्ञानों में देखी जा सकती है, जैसे भौतिकी रसायन आदि निरपेक्ष है, जैसे इन विज्ञानों का धर्म से कोई संबंध नहीं है, न तो ये धर्म के पक्ष में है और न विपक्ष में। उसी प्रकार धर्मनिरपेक्षतावाद विज्ञान की तरह तटस्थ होकर मानव कल्याण का कार्य करता है। धर्म से लड़ना इसका उद्देश्य नहीं है, तटस्थ रहना ही इसका लक्ष्य है। चौथा है, धर्मनिरपेक्षतावाद का संबंध लौकिक जगत से है। पारलौकिक जगत से ईश्वर शास्त्र या थियोलॉजी का संबंध है, परंतु धर्मनिरपेक्षतावाद केवल लौकिक जगत से संबंध रखता है, अर्थात उस जगत से जो ज्ञात है और जिसकी व्याख्या वास्तविक जीवन के अनुभवों से की जा सकती है। पारलौकिक जगत अज्ञात है और लौकिक जगत के अनुभवों से उसकी व्याख्या भी नहीं की जा सकती, अतः उसके प्रति तटस्थ रहना ही ठीक है। चूंकि धर्मनिरपेक्षतावाद लौकिक जीवन को ही महत्व देता है, इसलिए कुछ लोग इसे लौकिकतावाद या अहिकता का भी नाम देते हैं। पाश्चात्य देशों में धर्मनिरपेक्षतावाद से अहिकता का अर्थ लिया जाता है, परंतु धर्मनिरपेक्षता अहिकता से अधिक व्यापक है। अहिकता धर्मनिरपेक्षतावाद का एक तत्व है, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। इसकी व्यापकता इससे भी सिद्ध होती है कि इसमें नैतिकता को भी महत्व दिया गया है। नैतिकता को जानने के लिए लौकिकता या अहिकता से थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। इसलिए धर्मनिरपेक्षतावाद का अर्थ धर्म से तटस्थता के अर्थ में ही लिया जाना चाहिए। पांचवा है, धर्मनिरपेक्षतावाद में ईश्वरवाद और अनिश्वरवाद दोनों को स्थान नहीं है, क्योंकि दोनों ही अनुभव से सिद्ध करने योग्य नहीं है। छठवां है, धर्मनिरपेक्षतावाद नैतिकता को उन्हीं आधारों पर मान्यता देता है जो ईसाई धर्म में है, अर्थात नैतिकता की दृष्टि से दोनों का मत समान है, परंतु धर्मनिरपेक्षतावाद ईसाई धर्म के अंधविश्वासों के साथ सहमत नहीं है, क्योंकि ईसाई धर्म में ऐसे विश्वास जो अनुभव और तर्क की सीमा के परे हैं उनको स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब अगला शीर्षक है, क्या सेकुलरिज्म अनिश्वरवाद है? धर्मनिरपेक्षतावाद की धर्म के प्रति तटस्थता के कारण कुछ लोगों की यह धारणा बन जाती है कि धर्मनिरपेक्षतावाद अनिश्वरवाद है, परंतु होलीओक ने बार बार यही कहा है कि दोनों अलग है। अनिश्वरवाद अनुभव का विषय नहीं, इसलिए उसे तटस्थ रहना ही ठीक है। धर्मनिरपेक्षतावाद का आधार तो बुद्धि और तर्क है, नैतिकता भी बुद्धि पर ही निर्भर है। धर्मनिरपेक्षतावाद मनुष्य के जीवन में नैतिकता को महत्व देता है। ईश्वरवाद या अनिश्वरवाद के प्रति वह तटस्थ ही है। पृष्ठ संख्या 368, शीर्षक है समीक्षा। इसमें पहला है, पाश्चात्य देशों में धर्मनिरपेक्षतावाद के सिद्धांत इतने लोकप्रिय हुए कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक इसका प्रभाव अस्पष्ट दृष्टिगत हुआ। मानव का हित, लोक कल्याण, विज्ञान, तकनीकी, उद्योग धंधे, यही इसके मूल विचार बिंदु हैं। इन्हें स्वीकार करने में धार्मिक विश्वासों और मतों, श्रुतियों तथा धर्म ग्रंथों का कोई स्थान नहीं है। यह पूर्णतया मानववाद है। इस रूप में साम्यवाद धर्मनिरपेक्षता का एक उग्र रूप है। चीन, जापान आदि देश भी इसे इसी रूप में स्वीकार करते हुए मानव कल्याण में निरत हैं। इसका प्रभाव मानव समाज पर अस्पष्ट दिखलाई दे रहा है। आज मनुष्य भौतिक साधनों पर निर्भर रहकर जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति बिना ईश्वर की दुहाई दिए हुए करने में समर्थ हो रहा है। खनिज पदार्थों का उपयोग करते हुए, तकनीकी में प्रगत करते हुए, मानव की सभी सुख सुविधाओं की सामग्री में वृद्धि करता जा रहा है। आज बीमारी, अकाल, बाढ़, भूकंप आदि आपदाओं का सामना तंत्र मंत्र या पूजा पाठ के द्वारा नहीं, अपनी बुद्धि और सामर्थ्य के द्वारा खोजे गए विभिन्न साधनों से करने में सक्षम हो रहा है। यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि स्वर्ग की सभी कल्पित सुख सुविधाएं आज मनुष्य बिना धर्म के आधार माने हुए प्राप्त करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, प्रगति की संभावना अब भी बहुत अधिक है। दूसरा है, राज्य और मानव हित के लिए धर्मनिरपेक्षतावाद में पाए जाने वाले गुण जैसे सहिष्णुता, उपयोगितावाद, तकनीकी पर बल और लौकिकतावादी दृष्टि आवश्यक है। इसके विपरीत धर्म में जो हठवादिता और कट्टरपन तथा असहिष्णुता है, वह मानव हित के लिए ठीक नहीं है। तीसरा है, धर्मनिरपेक्षतावाद के अनेक गुण हैं और इसका महत्व भी है, परंतु इसमें बहुत सी कमियां भी हैं। धर्म से बिल्कुल अलग हटकर यह मानव की सेवा नहीं कर सकता। कुछ लोगों का कहना है कि धर्मनिरपेक्षतावाद द्वारा धर्म को नकारने की अपेक्षा उसकी उपेक्षा या इग्नोर करना अव्यवहारिक है, अर्थात धर्म की उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि धर्म सेक्युलर और आध्यात्म दोनों को अपने अंदर समेटता है। दूसरे शब्दों में, धर्म में व्यवहार और परमार्थ, लौकिक और पारलौकिक दोनों जगत सम्मिलित है। अतः सिद्ध है कि धर्म की उपेक्षा नहीं की जा सकती। चौथा है, धर्मनिरपेक्षतावाद तथ्य और मूल्य में अंतर करने में सक्षम नहीं है। इसका कारण यह है कि धर्मनिरपेक्षतावाद तर्क और बुद्धि को ही महत्व देता है। इसके आधार पर मिले हुए ज्ञान को सार्वलौकिक बनाया जा सकता है। यदि यह नैतिक मूल्य मानता है तो प्रश्न उठता है कि इस मूल्य का तथ्यों से भेद कैसे स्पष्ट होगा, क्योंकि मूल्य का अस्थायित्व और महत्व तो आस्था पर आधारित है, परंतु आस्था को धर्मनिरपेक्षतावाद में स्थान नहीं है, वह तो तर्क और बुद्धि को महत्व देता है। पांचवा है, धर्मनिरपेक्षतावाद परंपरागत धर्मों को स्वीकार नहीं करता, परंतु इसका प्रादुर्भाव एक आंदोलन और जीवन तथा चरित्र के सिद्धांत के रूप में हुआ और संभवतः यह परंपरा के रूप में शेष भी रह जाएगा। फिर भी इसका पालन परंपरागत धर्मों की तरह ही होने लगेगा। देखने में भी आता है कि साम्यवाद, जो धर्मनिरपेक्षतावाद का उग्र रूप है, परंपरा के रूप में ही साम्यवादियों द्वारा स्वीकार किया जाता है और उसके साहित्य तथा नेताओं के प्रति लोगों की आस्था परंपरागत धर्मों की तरह ही होती है। सारांश यह है कि धर्मनिरपेक्षतावाद भी परंपरा का रूप ग्रहण कर लेगा। पृष्ठ संख्या 369। छठवां है, धर्मनिरपेक्षतावाद की नैतिक धारणा पर उपयोगितावादी विचारधारा का प्रभाव है। अतः उपयोगितावाद के सभी दोष इस पर भी लागू होते हैं। उपयोगितावाद का लक्ष्य है अधिक से अधिक सुख, अधिक से अधिक लोगों का। यह सिद्धांत स्वयं में अपूर्ण है। क्या धर्म निरपेक्षतावाद सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का सिद्धांत नहीं स्थापित कर सकता? सातवां है, धर्मनिरपेक्षतावाद अपने को भौतिक साधनों सुख सुविधा तक ही सीमित रखता है, परंतु मनुष्य में भौतिकता के प्रति लगाव के अतिरिक्त पूर्णता और उद्देश्य की प्राप्ति के प्रति जो लगाव है, उसके विषय में धर्मनिरपेक्षतावाद क्या कहेगा? इस प्रश्न का उसके पास कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि यह न तो जीवन का कोई अध्यात्म परक उद्देश्य मानता है और न ही विश्व के रचयिता को मानता है। अतः धर्मनिरपेक्षतावाद मनुष्य को एक असहाय और व्यग्रता की अवस्था में छोड़ देता है। अब अगला शीर्षक है, भारतीय धर्मनिरपेक्षतावाद। पाश्चात्य जगत की धर्मनिरपेक्षतावाद की धारणा से भारत अप्रभावित नहीं रहा और देश की स्वतंत्रता के पश्चात उसे भी अपनी धर्मनिरपेक्षता का प्रमाण पत्र संविधान में देना पड़ा, जिसके अनुसार भारतीय संविधान व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में किसी भी धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता देता है। विभिन्न धर्मों को राज्य की ओर से समान रूप से सहायता देने की व्यवस्था है। धर्म के नाम पर राजनीतिक और सामाजिक जीवन में कोई भेदभाव का बर्ताव नहीं है। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया और घोषणा की गई कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इतना ही नहीं, इसके अनेक अनुच्छेद भी धर्मनिरपेक्षता को प्रकट करते हैं, जैसे अनुच्छेद 15 व 16 धार्मिक अभिभेदीकरण के सिद्धांत को प्रकट करता है, जिसके अनुसार बिना धार्मिक भेदभाव के नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 25 के द्वारा व्यक्तिगत सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 27 में धार्मिक विषयों में व्यक्तिगत सहमति को महत्व दिया गया है। अनुच्छेद 23 में राज्य द्वारा संचालित विद्यालयों में अनिवार्य धार्मिक शिक्षा देने का निषेध है। अनुच्छेद 325, 350 और 352 में धर्म के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र को बांटने का निषेध है। इस प्रकार भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसकी धर्मनिरपेक्षता इस अर्थ में है कि यह धर्मों के बीच सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करता है। भारत न तो रूस की तरह धर्म विरोधी और न ही इंग्लैंड की तरह राज्य द्वारा धर्म विशेष का समर्थन करता है। वैसे तो भारतीय हिंदू धर्म में धर्मनिरपेक्षता की प्रवृत्ति निहित है, परंतु स्पष्ट रूप से राज्य के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता की धारणा को मुखरित करने वाले प्रथम राजनीतिज्ञ पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जा सकता है। यद्यपि नेहरू जी पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षतावाद से सर्वाधिक प्रभावित लगते हैं और लौकिकता या अहिकता का ही समर्थन करते हैं, फिर भी उनके दृष्टिकोण को नास्तिक नहीं कह सकते, क्योंकि वे यह मानते थे कि मनुष्य की अन्य आवश्यकताओं के अतिरिक्त एक धार्मिक आवश्यकता भी होती है, जो आदर्श के रूप में या पूर्णता की प्राप्ति के रूप में उसे आकर्षित करती है। पृष्ठ संख्या 370। मनुष्य पूर्णत्व की ओर किसी शक्ति के कारण खींचा चला जाता है। उनका दृष्टिकोण नास्तिक न होते हुए भी अस्पष्टतया यह नहीं कहा जा सकता कि उनको धर्म, ईश्वर, अध्यात्म में विश्वास था। वे आधुनिक विज्ञान की उपलब्धियों से प्रभावित थे, इसलिए वैज्ञानिकता, तर्क बुद्धि तथा निरपेक्ष चिंतन और लौकिकता को अधिक महत्व देते थे। उनकी दृष्टि में धार्मिक पद्धति अवैज्ञानिक और रूढ़िवादी है। धर्म आध्यात्मिक पलायनवाद का रूप लेता है। उनके लिए लौकिक जगत सत्य है। वैज्ञानिक पद्धति और तकनीकी से संपूर्ण मानव का उत्थान हो सकता है। इस प्रकार उनका वैज्ञानिक मानवतावाद धर्मनिरपेक्षतावाद का रूप लेता है। कहना न होगा कि पंडित नेहरू का धर्मनिरपेक्षतावाद पाश्चात्य निरपेक्षतावाद का ही रूप है। महात्मा गांधी का सर्वधर्म संभाव भारतीय धर्मनिरपेक्षतावाद कहा जा सकता है। गांधी जी को आध्यात्म और पारलौकिक जगत में पूर्ण आस्था थी। वे हिंदू धर्म के पूर्ण समर्थक थे और मानते थे कि हिंदू धर्म विश्व धर्म का ही रूप है। सभी धर्मों में एकता है। धर्मों के प्रति सहिष्णुता और संभाव यही धर्मनिरपेक्षता है। नेहरू के धर्म निरपेक्षतावाद में धर्म के प्रति तटस्थता विद्यमान है, परंतु गांधी के धर्मनिरपेक्षतावाद में संभाव विद्यमान है। यहाँ भारतीय और पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षतावाद में अंतर स्पष्ट है। पाश्चात्य दृष्टि से धर्मनिरपेक्षतावाद मूलतः ऐसी स्थिति है जिसका संबंध इस लोक से है, परलोक से नहीं। 19वीं शताब्दी के यूरोप में इस शब्द का प्रयोग ऐसी आचार व्यवस्था के लिए होने लगा जो नैसर्गिक नैतिकता पर आधारित हो, स्वप्रकाशित धर्म पर नहीं। यदि एक शासन सिद्धांत के रूप में देखे तो धर्मनिरपेक्षतावाद का प्रयोग मुख्य रूप से दो अर्थों में होता है। क, ऐसी स्थिति में जब सरकार धार्मिक संगठन से कोई सरोकार नहीं रखती। ख, ऐसी स्थिति में जब सरकार सभी धार्मिक संगठनों और उनके अनुयायियों के साथ एक जैसा व्यवहार करती है। ऐसी स्थिति में सरकार धार्मिक संगठनों को सहायता दे सकती है या उनके प्रबंध में हस्तक्षेप कर सकती, परंतु ऐसा करते समय वह किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करती। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया। वैसे इससे पहले भी भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य माना जाता रहा है। वस्तुतः भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष का दूसरा अर्थ अधिक उपयुक्त होता है, जबकि इसका पहला अर्थ यूरोपीय संकल्पना को अधिक अच्छी तरह व्यक्त करता है। भारत में धर्मनिरपेक्ष की व्याख्या धर्म के प्रति तटस्थता के भाव के रूप में नहीं दी जाती, बल्कि धर्म समन्वय के रूप में दी जाती है। भारत में धर्मनिरपेक्षता केवल शासन सिद्धांत ही नहीं, बल्कि यह राष्ट्रीय एकता का मूल मंत्र भी है। अब शीर्षक है अंतर। भारतीय धर्मनिरपेक्षतावाद की यही धारणा डॉक्टर राधाकृष्णन अपनी पुस्तक रिकवरी ऑफ फेथ में व्यक्त करते हैं, जिसमें भारतीय और पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षतावाद का अंतर स्पष्ट हो जाता है। उनके कथनानुसार जब भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि हम अलौकिक आत्मा की सत्ता को अस्वीकार करते हैं अथवा जीवन के लिए धर्म की उपयोगिता को नहीं मानते अथवा हम अधर्म को प्रोत्साहन देते हैं। इसका यह भी अर्थ नहीं होता कि सेक्युलरिज्म स्वतः एक धर्म बन जाता है अथवा राज्य दैवी सत्ता का अबाध अधिकार मानता है। पृष्ठ संख्या 371। यद्यपि परम सत्ता में आस्था रखना भारतीय परंपरा का मुख्य सिद्धांत है, फिर भी भारतीय राज्य किसी विशिष्ट धर्म से अपना तादात्म्य नहीं रखता या किसी धर्म विशेष से नियंत्रित नहीं होता। यहाँ द्रष्टव्य है कि गांधी जी हिंदू धर्म का समर्थन करते हैं, परंतु किसी धर्म के पक्षपाती नहीं हैं। हिंदू धर्म को सभी धर्मों को समागम मानते हैं। सर्वधर्म संभाव से धर्म विशेष से पक्षपात नहीं सिद्ध होता। राज्य के स्तर पर यही निष्पक्षता ही सेक्युलरिज्म का रूप हो जाती है। इस प्रकार हम यह मानते हैं कि किसी एक धर्म को वरीयता नहीं दी जाएगी अथवा विशेष भेद दृष्टि नहीं रखी जाएगी। राष्ट्रीय जीवन में या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी एक धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि दूसरे प्रजातंत्र के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन होगा तथा धर्म और सरकार के हितों में विरोधी सिद्ध होगा। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार इस प्रकार धार्मिक निष्पक्षता, सहिष्णुता और भविष्यगामी दृष्टि और अंतर्राष्ट्रीय जीवन के लिए अधिक महत्वपूर्ण होगी। यहाँ पाश्चात्य और भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दृष्टिकोण बहुत ही उभर कर सामने आता है। पाश्चात्य देशों का धर्म के प्रति तटस्थता भारतीय दृष्टि में निष्पक्षता में बदल जाती है। धर्मों के प्रति उपेक्षा सहिष्णुता का रूप ले लेती है और ऐहिकता या लौकिकता तथा आध्यात्म का अलगाव भारतीय मत में सिमट कर एक हो जाता है। धर्म में लोक और परलोक अलग अलग नहीं है। विश्वजनीन दृष्टि से भारतीय धर्मनिरपेक्षतावाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विलगाव नहीं रखता। आज के इस वैज्ञानिक युग में धर्म को वैज्ञानिक दृष्टि से देनी होगी, न कि धर्म को जीवन से बिल्कुल अलग कर देना होगा। भारतीय धर्मनिरपेक्षतावाद के अनुसार धर्म के एक समूह के नागरिक के द्वारा ऐसे अधिकार की मांग नहीं की जा सकती जो अन्य धर्म के समूह के लोगों के विरुद्ध सिद्ध होता है। सामान्य जीवन में सभी का समान हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति या समूह धर्म के कारण भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। भारतीय धर्मनिरपेक्षतावाद का यह सिद्धांत राज्य और चर्च का अलगाव सिद्ध कर देता है। इस प्रकार भारतीय राज्य की धार्मिक निष्पक्षता को पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षतावाद या अनिश्वरवाद के साथ नहीं रखा जा सकता। डॉक्टर राधाकृष्णन स्पष्ट रूप में भारतीय निरपेक्षतावाद का पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षतावाद से बिलगाव सिद्ध करते हैं। धर्मों में समभाव, मैत्री और सहिष्णुता यही भारतीय धर्मनिरपेक्षतावाद के मुख्य गुण हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षतावाद में अन्य भारतीय विचारकों के अतिरिक्त गांधी जी की विचारधारा की अपनी खास विशेषता है। यह विशेषता है राज्य और धर्म के संबंध का विवाद और उसका हल। यही है भारतीय धर्मनिरपेक्षतावाद का महत्वपूर्ण बिंदु। जबकि एक ओर विश्व का लोकतंत्र पाश्चात्य सेकुलरिज्म की ओर भाग रहा था, गांधी का कहना था कि राजनीति को धर्ममय होना चाहिए। धर्म से अलग राजनीति जनता का कल्याण नहीं कर सकती। यहाँ गांधी जी पाश्चात्य अर्थ में तो धर्मनिरपेक्षतावादी नहीं प्रतीत होते, परंतु बात सही तो यह है कि गांधी जी जितना ही जोर राजनीति को धर्ममय करने के लिए देते हैं, उतना ही अधिक धर्मनिरपेक्षतावाद की पुष्टि करते हैं। इसका कारण यह है कि गांधी जी का दर्शन और धर्म किसी ऐसे विशेष सिद्धांत से नहीं जुड़ा हुआ है जिसकी भावना सांप्रदायिकता, वर्ग भेद या जात भेद का संकेत देती हो। पृष्ठ संख्या 372। गांधी का ईश्वर अल्लाह, राम सब कुछ है। गांधी का दर्शन वह मानववाद नहीं जो कुछ को छोड़कर कुछ को ग्रहण करता हो। मानवतावाद अनिश्वरवाद है, परंतु गांधी अनिश्वरवादी न होते हुए भी मानवतावादी हैं। उनका दर्शन सर्वोदय अंत्योदय का दर्शन है जो मानवतावाद से भी आगे का दर्शन है। गांधी जैसे राज्य के लिए धर्म आवश्यक मानते हैं, वैसे ही धर्म के लिए नैतिकता को प्रमुख मानते हैं। विश्व के किसी धर्म में नैतिकता का बहिष्कार नहीं मिलता। आस्तिक होते हुए यदि नैतिकता का पालन ही धर्म कहा जाए तो गांधी का दर्शन इसी की पुष्टि करता है। धर्म के प्रति संभाव रखना स्वयं में एक नैतिक गुण है। गांधी सर्वधर्म संभाव के लिए ही आग्रह करते हैं और यही भारतीय धर्मनिरपेक्षतावाद है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने गांधी के इसी दृष्टिकोण का समर्थन किया है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ है सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और समभाव। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि देश में कोई धर्म न हो। अगला शीर्षक है समीक्षा। इसके अंतर्गत शीर्षक है गुण। भारतीय धर्मनिरपेक्षतावाद की अनेक विशेषताएं हैं। जैसे प्रथम, यह उदारवादी है। इसकी उदारता इस बात में है कि बिना भेदभाव किए सभी नागरिकों को समानता तथा स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के पालन और प्रसार की स्वतंत्रता है। दूसरे, भारतीय धर्मनिरपेक्षतावाद स्थिर जड़ नहीं, यह निरंतर गतिशील है। इसमें जागरूकता है। तीसरे, इसमें समाज कल्याण को सर्वोपरि रखा गया है। समाज कल्याण में बाधा पड़ने पर धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। अब अगला शीर्षक है बाधाएं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में इन सभी विशेषताओं के होते हुए भी इसकी सफलता और पूर्ण स्थापना में कुछ बाधाएं भी हैं जिनको समाप्त करना आवश्यक है। मूलभूत समानता के अभाव में धार्मिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। समानता की शिक्षा और ग्रहणशीलता आवश्यक है। दूसरी बाधा अशिक्षा है। शिक्षा के द्वारा ही व्यापक दृष्टिकोण संभव है। धर्मनिरपेक्षता की भावना एकाएक नहीं उत्पन्न होगी। इसके लिए सतत प्रयास आवश्यक है। जन चेतना का विकास होना भी जरूरी है। भारत में धर्म की जड़ गहरी है। कुछ धर्मों में संकीर्णता, पक्षपात की भावना अज्ञानता के कारण बनी हुई है। इसके लिए जन चेतना जागृत करना इसकी सफलता के लिए अनिवार्य है। अपने ही धर्म विशेष के प्रति लगाव रखना संकीर्ण दृष्टिकोण का द्योतक है। अन्य धर्मों के प्रति उदार होना कर्तव्य की कोटि में आता है। इसके लिए तर्क तथा वैज्ञानिक दृष्टि आवश्यक है। इसी से सर्वधर्म संभाव उत्पन्न हो सकता है। राजनीति में धर्म तो हो, परंतु राजनीतिज्ञों को चाहिए कि धर्म को सांप्रदायिक रूप न दे। यही कर्तव्य शिक्षकों, समाज सुधारकों तथा परिवार के बड़े सदस्यों का हो कि वे विद्यार्थियों और समाज के लोगों के बीच धर्मनिरपेक्षता का आचरण प्रस्तुत करें। अब अगला शीर्षक है छद्म धर्म निरपेक्षवाद बनाम धर्मनिरपेक्षवाद या सूडो सेकुलरिज्म वर्सेस सेकुलरिज्म। धर्मनिरपेक्षता के विषय में विशेषकर भारत के संदर्भ में यह प्रश्न उठाया जाता है कि क्या भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। दूसरे शब्दों में, क्या भारत में वास्तविक अर्थ में धर्मनिरपेक्षवाद का पालन किया जाता है या झूठे अथवा छद्म धर्मनिरपेक्षता का ही अनुसरण किया जाता है। पृष्ठ संख्या 373। अतः यहाँ प्रश्न छद्म धर्मनिरपेक्षता बनाम धर्मनिरपेक्षता का है। यहाँ एक बार पुनः धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय स्पष्ट कर देना आवश्यक है। जैसा कि हमने धर्मनिरपेक्षवाद की पाश्चात्य अवधारणा को भारतीय अवधारणा से पृथक किया है, अतः उस आधार पर भारत जैसे देश के लिए जहां आध्यात्मिकता, धर्म और नैतिकता इसकी जलवायु और मिट्टी में रची बसी है, और विश्व के अनेक धर्म जहां अपनी नींव बना चुके हैं, वहां राज्य को धर्म से तटस्थ रहकर कार्य करने की कल्पना भी कैसे की जा सकती है। पाश्चात्य अवधारणा में राज्य का धर्म से तटस्थ या निरपेक्ष रहना ही धर्मनिरपेक्षवाद है। यह अनिश्वरवाद, प्रकृतिवाद और तथाकथित ईश्वरविहीन मानवतावाद की शरण लेता है, जो भारत के लिए न उपयुक्त है और न ग्रहणीय है। पाश्चात्य अवधारणा में सिद्धांततः चाहे भले ही राज्य को धर्म से तटस्थ रहने की बात मान ली गई हो, परंतु व्यवहार में इसे चरितार्थ करना संभव नहीं है। बहुत ही सामान्य तर्क यह दिया जा सकता है कि जब राज्य व्यक्ति की शिक्षा, स्वतंत्रता, समानता, रोजगार, आर्थिक और अनेकानेक सामाजिक आवश्यकताओं तथा अनेक अधिकारों से अपने को तटस्थ नहीं रख सकता, तो व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता धर्म से वह तटस्थ कैसे रह सकता है। राज्य में व्यक्ति और उसका धर्म तो प्रत्येक मोड़ पर खड़ा मिलता है। राज्य का धर्म से अपने को अलग रखकर अस्तित्व में बना रहना संभव नहीं है। धर्म व्यक्ति की एक आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति करना अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने की तरह ही आवश्यक है। इसीलिए गांधी जी ने राज्य और धर्म का समन्वय किया है। गांधी जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय धर्मनिरपेक्षवाद की वास्तविक अर्थों में आधारशिला रखी है। उन्होंने राजनीति का धर्म से संबंध स्थापित किया है। राजनीति उनके लिए मानव सेवा का साधन है। राजनीति ईश्वर सेवा का एक मार्ग है। उनका कहना था, राजनीति के माध्यम से मैं दुखी भारत के लिए और उसके द्वारा विश्व मानवता के लिए संघर्षरत हूँ। प्रायः राजनीति में कूटनीति, छल कपट और धोखा को क्षम्य माना जाता है, परंतु गांधी जी राजनीति में नैतिकता को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। राजनीति धर्म और नीति पर आधारित है। राजनीति को धर्म से या धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। जीवन पालन सत्य और अहिंसा से ही संभव है। इन्हीं से समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। राजनीति में अहिंसात्मक आंदोलन उनकी देन है। सत्याग्रह इसका मार्ग है। राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना उनका लक्ष्य था, किंतु वे उसे आध्यात्मिक स्वतंत्रता का साधक मानते थे। उनका स्वराज्य आध्यात्मिक अर्थ प्रकट करता है। आध्यात्मिक स्वतंत्रता या स्वराज्य या अपने ऊपर शासन में राष्ट्रीय स्वतंत्रता या भौतिक स्वतंत्रता निहित है। राजनीति और धर्म में समन्वय स्थापित करके उन्होंने धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत भी स्पष्ट किया। उनके धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है किसी एक धर्म को श्रेष्ठ बताकर दूसरे धर्म की उपेक्षा नहीं करनी है। अपने धर्म का पालन करते हुए दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी जिस अहिंसक राज्य की स्थापना करते हैं वह किसी धर्म से संबंधित नहीं है। धर्म संभाव ही उनकी दृष्टि में धर्मनिरपेक्षता है। राज्य में किसी धर्म विशेष को स्थान देना अनुचित है। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु होना, धर्मों का समादर करना उनका लक्ष्य था। गांधी जी के इसी मत को डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी स्वीकार किया है और पाश्चात्य इहलौकिकवादी या अनिश्वरवादी धर्मनिरपेक्षता के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को स्वीकार किया है, जिसके अनुसार राज्य का धर्म विशेष को संरक्षण देना लक्ष्य नहीं होना चाहिए और न तो किसी धर्म के तहत ही राज्य का कार्य व्यापार होना चाहिए। पृष्ठ संख्या 374। उन्होंने धर्मों में सौहार्द या संभाव रखने पर जोर दिया है। यही भारतीय धर्मनिरपेक्षवाद है। यही भारतीय परंपरा तथा सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति के अनुकूल भी है। परंतु कुछ अनिश्वरवादी लेखक धर्मनिरपेक्षवाद को पाश्चात्य और भारतीय धर्मनिरपेक्षवाद में बांटकर नहीं देखना चाहते। उनके अनुसार एक ही दवा सभी प्रकार के रोगियों को पिलाने देने का सिद्धांत उचित लगता है। धर्मनिरपेक्षता का पाश्चात्य सिद्धांत जैसे भी हो उनको उचित ठहराना है। ऐसे लोग गांधी के सर्वधर्म संभाव को तो ठीक मानते हैं, परंतु उसे धर्मनिरपेक्षवाद कहना ठीक नहीं मानते। उनका यह हठ अपनी जगह सही भी है, क्योंकि गांधी जी आध्यात्मवादी हैं। वे भला यह अलौकिकवादी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को क्यों मानते। उन्होंने तो राज्य और धर्म के समन्वय को आवश्यक माना है। राज्य बिना धर्म और आध्यात्मिक मूल्यों के कैसे चल सकता है। राज्य साध्य नहीं साधन है, वह व्यक्ति का आत्मिक विकास करने के लिए साधन है। व्यक्ति का आत्मिक विकास राज्य के आध्यात्मिक होने पर ही संभव होगा। साधन यदि उचित नहीं होगा तो अच्छे साध्य की प्राप्ति कैसे होगी। अतः निष्कर्ष यही निकलता है कि गांधी का सर्वधर्म संभाव ही भारतीय अर्थ में धर्मनिरपेक्षवाद है। राज्य धर्महीन नहीं होगा, परंतु राज्य किसी धर्म विशेष से तटस्थ रहकर सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु होगा। व्यक्ति भी अपने धर्म का पालन करते हुए सभी धर्मों के प्रति संभाव रखेगा। भारतीय अर्थ में धर्मनिरपेक्षता को धर्मों का निषेध करना नहीं माना जाता, या उस अर्थ में धर्मों से तटस्थ रहने या उदासीन रहने का सिद्धांत नहीं है। कुछ लोगों का यह भी भ्रम है कि सर्वधर्म संभाव और पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षतावाद को मिलाया गया है। निश्चित रूप से दोनों अलग धारणाएं हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षवाद पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षवाद से बिल्कुल भिन्न और अलग है। यह भ्रम तो उनको है जो यह मान लेते हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षवाद अर्थात सर्वधर्म संभाव पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षवाद का रूप है। दोनों के अंतर को पिछले पृष्ठों में बृहत रूप में देखा जा चुका है। भारतीय धर्मनिरपेक्षवाद का अर्थ स्पष्ट होने के पश्चात हम यह देख सकते हैं कि इसी अर्थ में हमारे देश के संविधान में धर्मनिरपेक्षवाद को स्वीकार और लागू किया गया है। धर्मनिरपेक्षवाद को इसी अर्थ में स्वीकार किए जाने के आधार पर ही हम धर्म, व्यक्ति और राज्य या राष्ट्र के संबंध में विचार कर सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है या नहीं। भारतीय अर्थ में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की विशेषता में मुख्य शर्तों का होना स्वीकार किया जा सकता है। प्रथम यह कि हमारे संविधान में स्वीकार किया गया है कि व्यक्तिगत और सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। दूसरे, राष्ट्र का कोई राजकीय धर्म नहीं है। तीसरे, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। व्यक्तियों को राष्ट्र का नागरिक बिना धार्मिक भेदभाव के माना जाना चाहिए। चौथे, धर्म का राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। चुनाव धर्म विशेष का सहारा लिए बिना संपन्न होना चाहिए और राजनैतिक दलों को भी किसी धर्म को अपने कार्यों के लिए हथकंडे के रूप में नहीं अपनाना चाहिए। भारत के संदर्भ में अब प्रश्न धर्मनिरपेक्षता की व्यवहारिकता को लेकर उठता है कि क्या यहाँ स्यूडो सेकुलरिज्म है या वास्तविक अर्थ में धर्मनिरपेक्षता का पालन किया जाता है। इतना तो सिद्ध है और बहुत ही स्पष्ट है कि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। यह किसी धर्म विशेष को आश्रय भी नहीं देता और न ही धर्म के आधार पर नागरिकों में भेदभाव करता है। परंतु इतने से ही भारत की धर्मनिरपेक्षता सिद्ध नहीं हो जाती। इस विषय में बहुत विवाद देखा जाता है और यह कहा जाता है कि भारत में वास्तविक अर्थों में धर्मनिरपेक्षता नहीं है। पृष्ठ संख्या 375। यह छद्म धर्म निरपेक्षता या सूडो सेकुलरिज्म का पल्ला पकड़े हुए है। दूसरे शब्दों में यह कहा जाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है। यदि भारतीय अर्थ में ही धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को लिया जाए तब भी उसका पालन नहीं किया जाता, ऐसा आक्षेप लगाया जाता है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि आज़ादी के बाद देश में 4 दशकों तक विकृत धर्मनिरपेक्षता चलती रही, इसलिए इसे धर्म का दुरुपयोग कहा जा रहा है। इस विवाद को आगे बढ़ाते हुए कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म इस देश के लिए श्रेयस्कर है, पर वह सच्ची धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए, झूठी धर्मनिरपेक्षता नहीं, जिसके पीछे अपना वोट बैंक बनाकर रखने की राजनीति रहती है और जो इसलिए झूठी हो जाती है। मुझे इस बात की खुशी है कि उसको सूडो सेकुलरिज्म की संज्ञा देकर चुनौती दी और शासक वर्ग को और सभी राजनीतिक नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी बहस के लिए आग्रहपूर्वक आह्वान किया। लोकसभा के अंदर और लोकसभा के बाहर अखबारों, रेडियो, दूरदर्शन आदि सभी संचार माध्यमों से कि सच्ची राष्ट्रीयता क्या है और सच्ची धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। इसी बहस के क्रम में भारतीय धर्मनिरपेक्षता के खोखलेपन को सूडो सेकुलरिज्म दिखाने का प्रयास किया गया है और यह कहा गया कि क्या यह सच्ची धर्मनिरपेक्षता है कि सांप्रदायिकता के नाम पर केवल हिंदू सांप्रदायिकता की बात की जाए और मुस्लिम सांप्रदायिकता का नाम भी न लिया जाए। क्या धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से भी ऊँचे स्थान का अधिकारी बना देना न्याय है? सांप्रदायिकता के अतिरिक्त छद्म धर्मनिरपेक्षता का दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इसी बहस में कॉमन लॉ से संबंधित बात भी की गई है और कहा गया है कि जब देश में सच्चे सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना करनी है तब क्यों एक कॉमन लॉ की बात उपेक्षित रह जाती है? यहाँ के सब देशवासी समान रूप से और समान अधिकार रखने वाले भारतीय नागरिक हों, जो विवाह और संपत्ति के उत्तराधिकारी आदि के संबंध में एक ही कॉमन लॉ से शासित हों, जैसे कि अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस आदि सभी देशों के सब नागरिक होते हैं। सच पूछिए तो देश को एकजुट करने का, एकता की डोर में बांधने का यही अकेला रास्ता है। यह नहीं कि हिंदुओं के लिए हिंदू लॉ और मुसलमानों के लिए उनका अलग पर्सनल लॉ, जिसमें सरकार का हस्तक्षेप उन्हें किसी कीमत पर स्वीकार नहीं। फिर सिख भी क्यों किसी से पीछे रहे? उन्होंने भी अब अपने पर्सनल लॉ की बात उठाई है। इस विवाद से इतना तो स्पष्ट ही होता है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को संविधान में स्वीकार करते हुए भी व्यवहार में चरितार्थ नहीं किया जाता। उदाहरण स्वरूप इसके कई प्रमाण दिए जा सकते हैं। इसमें पहला है, यदि धर्मनिरपेक्षता को व्यवहार में लाया जाता तो बहुत से तथाकथित धार्मिक व्यक्ति राजनीतिक शक्ति बनकर न उभरते। यही नहीं, धर्म के नाम पर चुनावों के समय वोट मांगने की अपील की जाती है। राजनीतिक दलों का निर्माण भी धार्मिक आधार पर किया गया है। यह धर्मनिरपेक्षता तो नहीं है। पृष्ठ संख्या 376। क्या चुनावों के समय प्रत्याशियों का चयन धार्मिक आधार पर नहीं होता या धार्मिक संगठनों को अपने पक्ष में इसलिए नहीं किया जाता कि चुनाव में विजय हो? एक धार्मिक संगठन का पूर्ण समर्थन प्राप्त हो, यदि ऐसा है तो यह छद्म धर्म निरपेक्षता का ही रूप है। दूसरा है, संवैधानिक दृष्टि में सभी भारतीय गणतांत्रिक भारत के नागरिक हैं, परंतु व्यवहार में देखने में आता है कि धार्मिक और सांप्रदायिक दृष्टि से सब लोग हिंदू या मुस्लिम या सिख और ईसाई आदि धार्मिक गुटों में बटे हुए हैं। यह किसी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण तो नहीं कहा जा सकता। तीसरा है, वर्तमान समय में धर्म के आधार पर धार्मिक संगठनों द्वारा अलग राज्य की मांग नेताओं द्वारा की जाती है। सिख धर्म के नाम पर संत फतेह सिंह ने सिखों के लिए अलग होमलैंड की मांग और संत भिंडरावाले द्वारा खालिस्तान की मांग पृथकतावाद के उदाहरण हैं। नागालैंड में ईसाई धर्म के आधार पर अलग राज्य की मांग है। नेताओं द्वारा धर्म का राज्य से टकराव कराना धर्मनिरपेक्षता का पालन तो नहीं कहा जा सकता। चौथा है, राजनीति में दबाव समूह का महत्व देखा जाता है। भारत में धार्मिक संगठनों की भूमिका इस कार्य में देखी जा सकती है। अल्पसंख्यक कहे जाने वाले धार्मिक संगठन भारतीय राजनीति में दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं, जैसे उर्दू को संवैधानिक संरक्षण देने की मांग, वैयक्तिक कानून के परिवर्तन की समस्या आदि। 1955 में हिंदू कोड बिल पारित हुआ, परंतु धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को इससे अलग रखा गया। पांचवा है, धार्मिक अल्पसंख्यकों को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देने की मांग, जैसे मुस्लिम, सिख तथा ईसाई धर्म के लोगों को उनकी मांग के अनुसार मंत्रिमंडल में सम्मिलित करने की बात, धर्मनिरपेक्षता का वास्तविक रूप तो नहीं है। छठवां है, धर्म के नाम पर आरक्षण की व्यवस्था भी इस ओर संकेत करती है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है। अब अगला शीर्षक है, समीक्षा एवं सुझाव। राजनीति में धर्म के प्रवेश या राजनीति का धर्म से गठबंधन, यद्यपि भारतीय धर्मनिरपेक्षवाद में स्वीकार किया गया है, परंतु गांधी जी के अनुसार इसका अर्थ राजनीति का आध्यात्मिकरण से था, न कि विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगठनों द्वारा सांप्रदायिकता का विश्वमन करना। सर्वधर्म संभाव का अर्थ तो इतना ही हुआ कि राज्य में व्यक्ति को अपने अपने धर्म पालन में स्वतंत्रता हो। एक धार्मिक संगठन दूसरे धार्मिक संगठन के लिए रोड़ा न बने, एक दूसरे के अस्तित्व के लिए बाधक न हो। यह तो ठीक है कि राज्य की शिक्षण संस्थाओं में धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाती और सर्वधर्म संभाव को ध्यान में रखा जाता है, परंतु एक अन्य समझौते के अंतर्गत सभी अल्पसंख्यकों को अपने धार्मिक हितों की रक्षा तथा प्रचार हेतु शिक्षा संस्थाओं के संचालन तथा प्रबंध करने का विशेषाधिकार भी दिया गया, तथा कथित बहुसंख्यक संप्रदाय के उपसंप्रदायों ने भी इस व्यवस्था का अपनी सुविधा अनुसार प्रयोग किया है। परिणाम यही निकला कि कई शिक्षण संस्थाओं में धर्म प्रचार के नाम पर धार्मिक हठधर्मिता तथा सांप्रदायिक वैमनस्य को ही प्रोत्साहित किया जा रहा है। सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक विषमताओं से उत्पन्न हुई टकराहट को सांप्रदायिक रंग देकर सांप्रदायिक विरोध, प्रतियोगिता तथा शत्रुता की भावना को प्रोत्साहित करने में धार्मिक प्रचार की स्वतंत्रता के अधिकार का दुरुपयोग हो रहा है। पृष्ठ संख्या 377। यद्यपि प्रत्येक धार्मिक संप्रदायों को अपनी धार्मिक निष्ठाओं तथा रीति रिवाजों को बनाए रखने का अधिकार है, परंतु धर्मनिरपेक्षता का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि इस उद्देश्य के लिए धार्मिक संप्रदायों द्वारा चलाई गई शिक्षण संस्थानों का आर्थिक भार राज्य अपने सिर पर उठाकर उन्हें अंधविश्वास, असहिष्णुता, हठधर्मिता, संकीर्णता इत्यादि को प्रोत्साहित करने में सहायता दे। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पर एक आक्षेप यह भी लगाया जाता है कि इस देश में धर्मनिरपेक्षता को विकसित न होने देने में सबसे बड़ा कारण सब धर्मों के लिए समान आदर की भावना को अधिक महत्व देना है। यह आक्षेप इसलिए गलत सिद्ध होता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तो दूसरा नाम ही सर्वधर्म संभाव है। धर्मों के प्रति सहिष्णुता ही इसका आधार है, फिर इसे कैसे छोड़ा जा सकता है। हाँ, इतना अवश्य स्वीकार किया जा सकता है कि इस भावना के कारण धर्मों में व्याप्त अंधविश्वासों, कुरीतियों, विषमताओं आदि की आलोचना नहीं हो पाती, क्योंकि आलोचना करने के कारण धर्म विरोधी और असहिष्णु होने का आरोप लगाया जा सकता है। इसीलिए जब कभी भी आवश्यकता पड़ती है तो हिंदू धर्म की आलोचना के लिए किसी हिंदू को मुस्लिम धर्म की आलोचना के लिए किसी मुस्लिम को तथा सिख धर्म की आलोचना के लिए किसी सिख को ढूंढना पड़ता है, क्योंकि दूसरे धर्म के किसी व्यक्ति द्वारा आलोचना या विरोध करने पर उसके ऊपर संप्रदायवादी या धर्म विरोधी होने का आरोप लगाए जाने का भय बना रहता है। भारतीय धर्म निरपेक्षवाद के आधार पर यह तो सही है कि एक धर्मावलंबी को दूसरे धर्म की आलोचना नहीं करनी चाहिए, परंतु इसका अर्थ यह तो नहीं है कि सर्वधर्म संभाव के नाम पर धर्मों में व्याप्त कुरीतियों, अन्याय और विषमताओं आदि को प्रश्रय दिया जाए। सर्वधर्म संभाव के सिद्धांत का पालन करते हुए भी धर्मों की विवेकपूर्ण आलोचना की जा सकती है, और ऐसी आलोचनाओं से धर्मों का अनादर नहीं समझना चाहिए। गांधी जी ने स्वयं कहा है कि हमें यह कहकर अपने को धोखा नहीं देना चाहिए कि संस्कृत भाषा में जो कुछ लिख दिया गया है अथवा शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसके प्रभाव को हम स्वीकार करें ही, जो नैतिकता के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है, जिसे मनुष्य की विवेक शक्ति की सीमा में बांधा नहीं जा सकता, वह कितना ही पुराना क्यों न हो, उसे सत्य के सूत्र में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह यंग इंडिया 20 अक्टूबर 1927 से है। यदि विवेक पूर्ण आलोचना को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता तो एक ओर तो लोकतंत्र की नींव कमजोर होगी और दूसरी ओर धर्मांधता, असुरक्षा तथा संघर्ष को बल मिलेगा। विवेक पूर्ण आलोचना के अभाव में तो यह धर्मनिरपेक्षता केवल औपचारिक होगी। एक आलोचक ने तो यहाँ तक कहा है कि सर्वधर्म संभाव के आदर्श ने हमारे नागरिक जीवन में सांप्रदायिक तथा जातीय अस्मिता की पहचान और बोध को अप्रासंगिक अथवा महत्वहीन करने की अपेक्षा केंद्रीय बना दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे अधिकांश नेताओं तथा शिक्षित मध्य वर्ग की ओढ़ी हुई धर्मनिरपेक्षता महज औपचारिक तथा शाब्दिक ही है। सामाजिक जीवन के विभिन्न अवसरों पर एक दूसरे को ईद मुबारक, हैप्पी क्रिसमस, गुरु पर्व दी लख बधाइयाँ होए और शुभ दीपावली कहना याद रखने के अतिरिक्त इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि सामाजिक जीवन को विवेक की कसौटी पर कसने से इस तथाकथित धर्मनिरपेक्षता का कोई संबंध नहीं है। पृष्ठ संख्या 378। इसी संबंध के अभाव में हमारे राजनैतिक दलों के नेता, मंत्री, प्रशासक अपने निहित स्वार्थों तथा राजनैतिक हितों की पूर्ति के लिए विभिन्न संप्रदायों, जातियों के हितों की सुरक्षा का दम भरते हुए उनके धार्मिक अनुष्ठानों, त्योहारों तथा समारोहों में उपस्थित होकर अपनी धर्मनिरपेक्षता का प्रदर्शन भी कर लेते हैं और सांप्रदायिकता को बल भी प्रदान कर देते हैं। भारतीय राजनैतिक दलों के लिए धर्मनिरपेक्षता एक सुविधाजनक आकर्षक नारे से अधिक महत्व नहीं रखती। यद्यपि अधिकांश राजनैतिक दल धर्मनिरपेक्षता का ढिढोरा पीटने और सांप्रदायिकता की खाल उतारने में एक दूसरे से आगे रहते हैं, विधानसभाओं तथा संसदीय चुनावों के समय अपने दलों के प्रत्याशी खड़े करते समय दूसरे दलों के साथ गठबंधन की नीति निर्धारित करने, प्रतिद्वंद्वी दलों तथा प्रत्याशियों के विरुद्ध किए जाने वाले प्रचार में जनता का ध्यान वास्तविक समस्याओं से हटाने के लिए सांप्रदायिक संगठनों तथा नेताओं की सहायता लेने तथा सांप्रदायिक प्रचार करने से कभी नहीं हिचकिचाते। ऐसी स्थिति में यही कहा जा सकता है कि जब तक भारतीय धर्मनिरपेक्षता को आडंबरपूर्ण बना रहने दिया जाएगा, तब तक धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने का एक कवच और साधन के बजाय एक समस्या बनकर रह जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि कुछ शर्तों का आवश्यक रूप से पालन किया जाए। इसके लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। सुझाव, इसमें पहला है कानून का शासन हो। सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्था हो। संप्रदाय के अनुसार जो विविध सुविधाएं दी जाती हों उन्हें समाप्त करके समानता, स्वतंत्रता तथा न्याय के आदर्श का पालन होना चाहिए। एक सामान्य कानून ही नागरिकों को देश की सामान्य धारा से जोड़ सकता है। अब दूसरा सुझाव है सामान्य शिक्षा व्यवस्था। शिक्षण संस्थाएं जागरूक तथा जिम्मेदार नागरिकों का निर्माण करती हैं, अतः देश की शिक्षा व्यवस्था का आधार सामान्य शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, न कि विशिष्ट जाति या संप्रदाय या धर्म के आधार पर शिक्षा दी जाए। इससे शिक्षा संस्थाओं को सांप्रदायिक प्रभाव से बचाया जा सकता है। इसके लिए देश की एक सामान्य शिक्षा व्यवस्था ही बहुत बड़ा आधार है। तीसरा है धार्मिक प्रचार प्रसार के अधिकार की समाप्ति। धर्मनिरपेक्षता की दृष्टि से अपने अपने धर्म में निष्ठा और आस्था रखना ही पर्याप्त है। व्यक्ति का यह अधिकार उसके पास सुरक्षित है। उसे अपने धर्म में निष्ठा और उसके पालन की स्वतंत्रता हो, यही उचित है। इस अधिकार का उपयोग सांप्रदायिकता उत्पन्न करने, धर्म प्रचार के द्वारा धार्मिक उन्माद उत्पन्न करने, धर्म परिवर्तन कराने का उसको कोई अधिकार नहीं है। गांधी जी ने ठीक ही कहा था कि धर्म की शिक्षा बुद्धि या तलवार से नहीं दी जा सकती, उसे हम आचार द्वारा ही औरों को सिखा सकते हैं। अतः जो चाहता है कि उसका धर्म ग्राह्य हो, उसका धर्म सर्वश्रेष्ठ समझा जाए, उसे अपने धर्म को अपने आचरण में उतारना चाहिए, न कि वचन से कुछ कहना चाहिए। पृष्ठ संख्या 379। अब चौथा सुझाव है सामाजिक जीवन धर्मनिरपेक्ष हो। इसका तात्पर्य यह है कि सामाजिक जीवन की बहुत सारी समस्याएं जो किसी धर्म के घेरे में नहीं जाती, उनको किसी सांप्रदायिक रंग में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। खान पान, रहन सहन तथा किसी की सहायता करने में संप्रदायवाद को घुसाने का कोई अर्थ नहीं होता। यदि ऐसा कोई करता है तो उस पर कड़ा से कड़ा नियंत्रण होना चाहिए। पांचवा है राष्ट्रीय त्योहारों को महत्व देना। राष्ट्रीय एकता राष्ट्रीयता की भावना में निहित होती है। राष्ट्रीयता खंड खंड में नहीं बटी होती, वह तो एक ही है। इसको सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय त्योहारों जैसे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को ही सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। अन्य त्योहार जो सांप्रदायिकता की भावना उत्पन्न करते हों उनको बंद कर देना चाहिए। परंपरागत त्योहारों के लिए संप्रदाय विशेष को कुछ आकस्मिक अवकाश दिए जाएं, जिन्हें लोग अपनी इच्छा और सुविधा से उपयोग में लाएं। इन धार्मिक त्योहारों पर भी इस बात का प्रतिबंध रहे कि धार्मिक उन्माद न फैलाया जाए। छठवां है धार्मिक आधार पर चुनाव प्रचार बंद हो। यद्यपि सिद्धांततः यह स्वीकार किया गया है कि धार्मिक आधार पर चुनाव प्रचार या चुनाव में राजनीतिक दल से प्रत्याशी को न खड़ा किया जाए, परंतु इस सिद्धांत का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता। सांप्रदायिकता का प्रवेश चुनाव प्रचार में देखा जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि इस सिद्धांत का उल्लंघन करने वाले को कड़े से कड़े दंड की व्यवस्था हो, यहाँ तक कि आगे के चुनाव में भाग लेने की अयोग्य सिद्ध कर दिया जाए। सातवां है पाठ्य पुस्तकों में धर्म सहिष्णुता या सर्वधर्म संभाव का समावेश। पाठ्य पुस्तकों में सांप्रदायिकता की गंध नहीं होनी चाहिए। बचपन में पढ़ा हुआ शिक्षा का प्रभाव अमिट होता है। कोमल बाल मन पर रूढ़िवादिता धर्मांधता कुरीतियों और वैमनस्य का प्रभाव यदि एक बार पड़ जाता है तो आजीवन बना रहता है। ऐसी दशा में प्रारंभ से ही निष्पक्षता और पूर्वाग्रह विहीन विचारों का प्रभाव डालना श्रेयस्कर होगा। उपर्युक्त सुझावों की यद्यपि अनेक आलोचनाएं की जा सकती हैं और यह कहा जा सकता है कि ये सुझाव व्यवहारिक नहीं हैं, अथवा यह कहा जा सकता है कि इनसे प्राचीन परंपरा पर आघात लगेगा, या फिर इन सुझावों को सामान्य रूप से समर्थन न मिले। फिर भी रचनात्मक कार्यों द्वारा उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं और धीरे धीरे मानसिक परिवर्तन उत्पन्न किया जा सकता है। यदि हमें लोकतंत्र की रक्षा करनी है, देश को सुदृढ़ आधार देना है, तो धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना को व्यवहारिकता के स्तर पर उतारना होगा। यदि ऐसा नहीं होता तो धर्मनिरपेक्षता जो इस समय देखने में है, छद्म धर्म निरपेक्षवाद ही कहा जाएगा। इस झूठे धर्म निरपेक्षवाद से देश की प्रगति नहीं हो सकती। सांप्रदायिकता की फसल तैयार होती रहेगी और उसी को काटकर पुनः उसी बीज को जनमानस रूपी खेत में बोते रहेंगे। अतः धर्मनिरपेक्षता को सच्चे अर्थों में व्यवहारिक स्तर पर उतारना होगा। अध्याय 23 समाप्त।